से बहुत 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 प्यार है, क्योंकि बाप दादा को टीचर से बहुत 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 प्यार है, क्योंकि टीचर्स बाप समान ड्यूटी पर है। बाप दादा को बच्चों का ऐसा वैसा चेहरा देखना पसंद नहीं। कैसा चेहरा? ऐसा वैसा। अव्यक्त मुरली, 3 फरवरी 1974। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग उत्पन्न करेगी, तभी वैराग के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो, क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति रहती है? जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। 74 में बाबा ने कहा है, कोई भी लगाव न हो। तो हम साधना कर रहे हैं किसकी? वैराग्य की। और वैराग्य में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? मोह, आसक्ति, लगाव। कल हमने कुछ बातें देखी थी, 10 बातें देखी थी। कौन कौन सी? प्रशंसा से लगाव ना हो, दूसरा एनिमल्स, तीसरा एंटिक्स, पुरानी वस्तुओं से, चौथा भक्ति, पांचवा शरीर, छठवा कंफर्ट, सुविधाएं। ये सुविधाएं साधना को बढ़ाती है या कम करती है? और कार्ड्स में आसक्ति, और कोम, और डेकोरेशन, और आज हम 10 बातें और देखेंगे। इमोशंस में भी आसक्ति होती है। एक विशेष फीलिंग या इमोशन जो सुख पहुंचाता है, उसमें आसक्ति हो जाती है। बार बार उसको मन में ही दोहराते हैं। जो अतीत के सुख भोगे हैं, उसी स्मृति को बार बार हम लाते हैं, रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, वो पक्की हो जाती है, आसक्ति का रूप धारण करती है। कल की मुरली में 7 होमवर्क दिए बाबा ने। पहला, खुशी गायब क्यों होती है, लिस्ट निकालो। दूसरा, चेहरा मुरझाता क्यों है, लिस्ट निकालो। तीसरा, कमजोरी खत्म क्यों नहीं हो रही है, सोचो, हटाओ, छोड़कर जाओ इसी हॉल में। चौथा, बीती सो बीती क्यों नहीं हो रहा है, सोचो। पांचवा, स्मृति विलुप्त क्यों हो जाती है, क्यों कमजोर हो जाती है, डबल विदेशियों से मुलाकात, क्या करो रात को, और अमृत वेला कुछ करो, क्या करो रात में, इमर्ज करो, उमंग को इमर्ज करो, क्यों मर्ज हो गया उसको फिर से इमर्ज करो, अमृत वेले भी वही काम करो, ताकि जो संकल्प है, जो निर्णय है, जो प्रतिज्ञा की है, जो प्रॉमिस किया है, कौन सा प्रॉमिस? हिम्मत है, रहेंगे खुश, दूसरों को करेंगे खुश, रहेंगे खुशी बांटेंगे, खुशी है तो सब कुछ है, खुशी की कमाल, खुशी की संपन्नता, खुशी की चमक, खुशी की झलक, खुशी की भरपूरता, खुशी की खुराक, खुश है तो सब कुछ है, खुशी है तो सब कुछ है। अगला, टीचर्स क्या है, हर समय ड्यूटी पर है, और जब कोई ड्यूटी पर होता है तो सोता है क्या, आलस आता है क्या? ड्यूटी अर्थात अलर्ट, सदैव, जैसे कोई आर्मी वाला है, मिलिट्री वाला है, कैंप लगा के सोए हुए है, अचानक आवाज, सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? शस्त्र पर। बाद में देखेंगे कोई है या नहीं है, आंख भी बाद में खोलेंगे, आहट हुई कि हाथ कौन है, नींद में भी जागे हुए है, वो अलर्टनेस तो बाप दादा को टीचर से बहुत 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 प्यार है, क्योंकि टीचर्स बाप समान ड्यूटी पर है। तो बाबा ने काम दिया है, सदा क्या रहो, ड्यूटी पर। और सातवां, निर्विघ्न सेंटर, निर्विघ्न टीचर, निर्विघ्न सेवाधारी, निर्विघ्न कुमार, निर्विघ्न कुमारिया, निर्विघ्न माताएं, निर्विघ्न अधर कुमार, निर्विघ्न कन्याएं, निर्विघ्न सभी निर्विघ्न हो जाए। ऐसा लेटर अब तक नहीं आया। सारी मुरली की कसर बाबा ने एक शब्द में निकाल दी। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तुम ये भी हो, तुम वो भी हो, तुम ऐसा भी करते हो, तुम वैसा भी करते हो, लेकिन 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 डैश 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 बट एंड बट एंड बट एंड बट लेकिन लेकिन लेकिन। तो काम क्या दिया है, सदा खुश। काम क्या दिया है, खुशी गायब क्यों होती है, खुश रहना बहुत बड़ा पुरुषार्थ तपस्या है, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। क्योंकि यहां जो भी चीजें हो रही है उन सब का लक्ष्य क्या है, हमारी खुशी का अपहरण। तो और यहां हम साधना कर रहे हैं वैराग की। अगर लगाव हो गया, खुशी गायब, अटैचमेंट हो गई, तो चेहरा मुरझा जाएगा, फिर बीती सो बीती नहीं रहेगी, पुरानी बातें याद करने में रस आएगा, अच्छा लगेगा, और वही बातें रात को सोते समय और अमृत वेला याद आएगी और उसमें आसक्ति बढ़ेगी। निर्विघ्न नहीं होगा सेंटर, हम ड्यूटी पर नहीं रहेंगे। ड्यूटी पर होते हुए भी दिवा स्वप्न की अवस्था, डे ड्रीमिंग, खोए हुए किन्हीं ख्यालों में, किसी यादों में। तो 84 प्रकार की अटैचमेंट्स में से 10 अटैचमेंट कल देखी थी, आज 10 देखेंगे। तो एक है इमोशंस। योगी अर्थात वो जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल क्वेश्चंट। बाकी तो परिस्थितियां नहीं है तब स्थिर रहते, पर जैसी परिस्थितियां आ गई, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। कल कहा ना, क्रोध के बारे में भी कहा ना कल कुछ, इमोशंस, इमोशनल कंट्रोल, अपने ही इमोशंस को स्टडी करना। क्रोध आया तो उसका दमन नहीं, आने दो। क्यों आया, किस वजह से आया, जरूर भीतर कोई इच्छा है जो अतृप्त रह गई, कुछ तो है। हर चीज के कारण तक पहुंचना है, जब तक कारण तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो बेचैन ही रहेगी। इमोशंस हमें बांधे रखते हैं, और जब इमोशंस आते हैं तब ज्ञान सब उड़ जाता है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। भावना ही भावना है, भाव ही भाव, कोई भी इमोशन हमें बांधे ना। इंडिपेंडेंस। दूसरा फैशन, उसकी कल भी हमने चर्चा की थी, 5 बातों में से एक बात बताना उसमें थी, वो भूल गए, जो इस्लाम में है बहनों के लिए, केवल चेहरा, कई कई कहते हैं केवल आंखें, हाथ और पैर, बस इतना ही खुला हो, बाकी सब कवर्ड। फर्नीचर, एक विदेशी भारत आता है, एक योगी के यहाँ जाता है, उसकी कुटिया में कुछ भी नहीं है, वो कहता है आपके पास कोई भी फर्नीचर नहीं है आपके घर में। वो योगी उससे पूछता है आप कौन हो, वो कहता है मैं विदेशी हूँ, किस लिए आए हो, यहाँ घूमने फिरने आए, तो तुम्हारा फर्नीचर कहाँ है, वो कहता है फर्नीचर मैं क्यों रखूँ, मैं विदेशी हूँ, मैं घूमने आया हूँ, मैं फॉरेनर हूँ। वो योगी कहता है मैं भी फॉरेनर हूँ, मैं इस घर में ही फॉरेनर हूँ, मैं इस शरीर में ही फॉरेनर हूँ। फर्नीचर से भी बढ़िया अटैचमेंट होती है। गेम्स बहुत अच्छी बात है, खेलकूद स्वस्थ रहने के लिए, परंतु ये एडिक्शन ना हो जाए, ज्ञान योग छोड़ के बस इसी के पीछे ना लग जाए। अब जीतनी है, ट्रॉफी जीतनी है, ये जीतना है, वो जीतना है, और उसमें फिर डिजिटल गेम्स का एडिक्शन, दिन रात छोटे बच्चे मोबाइल पर खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं, ये भी एक एडिक्शन है। खेल, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोशिश करके देखो, एक महीना सब बंद करके देखो और देखो क्या होता है, शांति हो जाएगी। एक दिन करके देखो। अगला गॉसिप्स, गपशप, झरमुई झगमुई, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये सब क्या करता है, ऊर्जा को नष्ट करता है। और इसमें बड़ा रस है, दो लोग मिल जाए और तीसरे के प्रति जो वहां है नहीं बातें करें, ये वही कर सकते हैं जो जिनके अंदर बहुत खालीपन है, और उनके लिए जरूरी भी है। वो अपना खालीपन मिटाएंगे कैसे, लंबा समय ज्ञान में कोई है परंतु फिर भी ज्ञान की उस ऊंचाइयों से नहीं भरा है, तो अंदर एक भयंकर खालीपन है। इस खालीपन को भरने के लिए ही व्यक्ति निंदा में उलझता है, किसी की निंदा कर कर थोड़ी तृप्ति होती है, भरे जैसा लगता है, हम भी कुछ कर रहे हैं। झरमुई झगमुई गॉसिप्स, ये भी बहुत एक एडिक्शन जैसा है, आदत है, और हमें पता नहीं चलता है कि बाबा ने कल कहा होमवर्क, कमजोरियों को हटाओ, मिटाओ, कमी को हटा दो, निकाल दो, यहीं छोड़ कर जाओ इसी हॉल में। पहले तो ये पता रहना चाहिए कि ये गॉसिप हमारी कमजोरी है, हमारे मुख से व्यक्तियों के लिए वो शब्द निकले जब वो वही निकले उनके एब्सेंस में जो उनके प्रेजेंस में निकले, नहीं तो ये क्या करता है, हमारी ऊर्जा को खींचता है। हमें कल भी कहा था एक ही चीज, ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मुख्य लक्ष्य है। कहीं पर भी ऐसी चीजों में हमारी ऊर्जा ना जाए फिर वो काम विकार हो सकता है, उसमें ऊर्जा चली जाती है, झरमुई झगमुई हो सकती, कोई व्यक्ति हो सकता है, आसक्ति हो सकती, कहीं ना कहीं ऊर्जा, भोजन हो सकता है, उसमें ऊर्जा चली जाती है सोचने में उसके बारे में। उसके बाद में इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में भी सूचनाएं, हाँ इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए क्या क्या हो रहा है, बस पर उसके बहुत गहराई में डिटेल में वो सब नहीं जाना है। अगला इंटरनेट, इंटरनेट भी क्या है, एक दोनों है, वो दुधारी तलवार, चाहे तो कोई उसमें से बहुत कुछ अच्छी चीजें ले सकता है या तो संपूर्ण पतन इंटरनेट के कारण हो सकता है, संपूर्ण पतन। वो जाल है, नेट मतलब ही जाल, अंतरजाल, इंटरनेट, उसमें जाना और वापस आ जाना, वो चक्रव्यूह है, जाना तो आसान है परंतु निकलने के लिए बहुत मुश्किल है। सारे महारथी एक साथ आक्रमण कर देते, क्या करेगा अभिमन्यु, बेचारा कितना असहाय है, सब लोग योग में बैठे और किसी का मोबाइल बज जाता है तो सारे लोग जिस तरह अभिमन्यु पर आक्रमण करते थे उस तरह देखते हैं उस नजर से। ये इंटरनेट ऐसा है, इसलिए एक लक्ष्य रखना है। इंटरनेट, गूगल का जो CEO है उसने एक बात कही है, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट पर्पस, बहुत अच्छी चीज कही है, बिना पर्पस के कभी भी इंटरनेट सोशल मीडिया पर नहीं जाना है। लक्ष्य है, बाबा ने ये कौन सी बात कह दी, अच्छा ये बात कही है, ये रूप बसंत, क्या होता है ये रूप बसंत, हाँ इसकी कहानी ढूंढनी है तो जाओ, ढूंढ कर हो गया वापस आ जाओ। कोई क्लास सुनना है या कोई गीत सुनना है या कुछ चाहिए, कोई मैटर, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना, कोई ज्ञान की पॉइंट चाहिए, उसमें गए, ढूंढा और वैसे ही वापस आ जाओ। क्योंकि आजू बाजू में सुहावने दृश्य बहुत ज़्यादा है, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, चालू कहाँ से किया और एंड कहाँ से हुआ, काम था 5 मिनट का, 2-3 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चला। द ब्लैक होल ऑफ यूट्यूब, इसको कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या करता है, सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। इसलिए पहले तो जाओ ही नहीं, अगर जाना भी रहा तो गो विथ पर्पस, कि मैं क्यों इंटरनेट पर जा रहा हूं, किस लिए, पर्पस क्या है मेरा। बिना पर्पस के गए तो डिजिटल दुनिया की अज्ञात नगरी, अज्ञात गलियों में भटक जाएंगे। इसकी बहुत सारी छोटी छोटी गलियां हैं, कुंज गलियां, भटक जाएंगे। इसके लिए नेट पर जाओ तो कैसे, क्या मैं किस लिए जा रहा हूं, उतना करके वापस आ जाओ बस। और एक साथ दो काम करने के लिए नहीं जाओ, एक बार एक ही काम करके आओ, दो काम करते करते 10 काम हो जाएंगे फिर। तो नेट भी एक क्या है, एडिक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद में घर, लौकिक घर या जहां हम रहते हैं उससे भी लगाव हो जाता है। एक स्थान पर लंबे समय रहे थे, इसके लिए सन्यासी क्या करते थे, रहते ही नहीं थे, पर अभी रहना पड़ता है। तो रहते हुए भी जिस स्थान पर हम रहते उस स्थान का बार बार निरीक्षण करना है, साक्षी भाव से, 360 डिग्री से। 360 डिग्री व्यू के लिए क्या चाहिए, ऊपर बैठना पड़ता है, पैनोरामिक व्यू सारा दिख जाए, एकदम ऊपर बैठकर ही देखा जा सकता है, ऊपर बैठ के ही देखना है। ये है, ये स्थान है, आज ये है कल नहीं रहेगा, आज मैं यहां हूं कल मैं यहां नहीं रहूंगा, रहूंगी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, कुछ भी तो परमानेंट नहीं है कुछ भी। तो ये जो स्थान है इसमें भी बहुत गहरी अटैचमेंट हो जाती है, बहुत गहरी मेरापन आ जाता है और गहरी अटैचमेंट हो जाती है। ये इस पर काम उसको छोड़कर नहीं करना है, वहां रहते हुए ही। एक साधु था जिसने 40 साल तक एक गुफा में तपस्या की, एक ही गुफा में बैठकर हिमालय में, फिर वो नीचे आया और ये गुरु माँ के बारे में सुना होगा, उनसे मिला और फिर उनको लेकर वो वहां गया। तब तक वहां कोई दूसरा सन्यासी बैठ के तपस्या कर रहा था उसी गुफा में, पर उसने कहा ये वो गुफा है जहां मैंने तपस्या की, अब वहां कोई और है, कोई आ सकती ही नहीं तो रहता है ना, ये मेरा तपस्या स्थल है, यहां कोई और नहीं बैठना चाहिए, ये मेरी यादगार है, कॉपीराइट, मेरा योग का स्थान, यहां पर बैठकर मेरा योग अच्छा होता है, वहां पर बैठकर मेरा चिंतन अच्छा होता है। कोई भी स्थान हमें बांधे नहीं, कोई भी स्थान, हर स्थान पर बैठकर योग का अभ्यास, और हर स्थान और हर परिस्थिति और हर समय में कहीं पर भी योग किया जा सकता है। नहीं किया है और परिस्थितियां तो आती है तो उसको योग में कन्वर्ट कर देना है। तो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं, नहीं ना, इन्फॉर्मेशन भी एक आ सकती, इन्फॉर्मेशन सूचना है, टू मच इन्फॉर्मेशन कॉजेस पीसलेसनेस, कहीं पर स्लोगन लिखा था, ढेर सारी सूचना है, यहाँ ये हो रहा है। इसलिए पहले का जगत क्यों सुखी था, पता ही नहीं चलता था यहाँ से वहाँ क्या हो रहा है, उस राज्य में क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता था। अभी विश्व ग्राम बन गया है, एक ग्लोबल विलेज, वहां की न्यूज यहाँ, वहां से लोगों से भी पहले हमें पता चलती है,
मधुबन में क्या हो रहा है ये बाहर वालों को हमसे पहले पता चल जाता है. इसकी वजह से टू मच इन्फॉर्मेशन कॉजेज पीसलेसनेस. तो इन्फॉर्मेशन के प्रति आसक्ति, इंटरनेट के प्रति आसक्ति, घर के प्रति आसक्ति, गॉसिप के प्रति आसक्ति, गेम्स के प्रति आसक्ति, फर्नीचर, फैशन, इमोशंस, नौवा जोक्स. कई लोगों की आदत ही बन गई है, जोक्स ही भेजते रहते दिन रात, फॉरवर्ड करते ही रहते कुछ कुछ, उसी की वो भी एक आसक्ति है. और आज जो विशेष हम चर्चा कर रहे थे ये तो साइड सीन सबसे गहरी जो आसक्ति हो गई है वो किस में हो गई है? भोजन में. बाबा मुरलियों में कहते हैं ये पुराना घर है, नया घर बन रहा है. ये पुराना घर है, तुम्हारी आसक्ति किस में होनी चाहिए? नए घर में होनी चाहिए. पुराने घर के प्रति वैराग होनी चाहिए. ये बातें बाबा कह रहे हैं संसार के लिए, पर यही बातें लागू होती है किसके लिए? शरीर के लिए. ये शरीर भी क्या है? एक घर है. भोजन के 13 नियम है, अर्थात इस घर के 13 नियम. पहला नियम घर का, दो चीजें होती है घर में, एक होता है कंस्ट्रक्शन, एक होता है सफाई. अब इस सफाई और क्लीनिंग के दो रूल्स है, 13 रूल्स है. पहला, यदि आवश्यकता से अधिक सामग्री मकान में एकत्र हो जाए तो वहां मलमा इकट्ठा हो जाता है. यह पहला रूल. घर बन रहा है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा डाल दिया, डाले ही जा रहे, ट्रैक्टर आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है. किस लिए आ रहा है? ताकि घर का कंस्ट्रक्शन हो. तो एक्स्ट्रा मटेरियल डाला तो वहां क्या हो जाएगा? मलमा इकट्ठा हो जाएगा. अपने सामने घर को लाओ जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ये 13 की 13 बातें घर से संबंधित है. तो ट्रैक्टर से सामान आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, तो क्या हो जाएगा? वहां मलमा इकट्ठा हो जाएगा. आवश्यकता से अधिक भोजन यदि शरीर में पहुंचता है तो मल एकत्र हो जाता है. तो सबसे पहला, एक्स्ट्रा मटेरियल, जितना आवश्यकता है उतना ही मटेरियल वहां तक पहुंचाना है. थोड़ा भी एक्स्ट्रा दिया तो क्या होगा? कचरा इकट्ठा होगा. और जहां कचरा इकट्ठा है वहां क्या होगा? सभी बीमारियां आएगी. क्या वास्तव में हमें उतनी आवश्यकता है जितना हम डाल रहे? धीरे धीरे पता चलेगा कि बिल्कुल नहीं. फूड इज द कॉज ऑफ डिसीजेस. धीरे धीरे ये सत्य उद्घाटन होगा कि भोजन ही हमारी बीमारियों का कारण है. यह पहला रूल. दूसरा, मकान में अधिक सामग्री के कारण एकत्र मलबे को कम करने का उचित उपाय यही हो सकता है कि जब तक कारीगर पहली वाली सामग्री को की खपत न कर ले तब तक आगे और सामग्री न पहुंचाई जाए. दूसरा नियम, जब तक जो अवेलेबल सामग्री है, सीमेंट है, सब कुछ है, पहले उसको पूरा करो, उसके बाद में नई सामग्री आए. वैसे ही शरीर में यदि मल का संचय हो जाए तो उसे हटाने का उचित एवं सरल साधन यही है कि जब तक जीवनी शक्ति मल को हटा ना ले तब तक शरीर में आगे और भोजन न पहुंचाया जाए. अभी अभी नाश्ता किया, अभी 4 घंटे 6 घंटे ही नहीं हुए, फिर लंच डाल दिया, अभी वो पचा ही नहीं है, और फिर शाम को योग में भारीपन, नींद, अमृत वेले अलार्म का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी नींद नहीं खुलती. सहज नींद खुल जाए, शरीर में इतनी जीवनी शक्ति हो, यदि आलस आता है सुबह सुबह, एक बार उठो देखो 2 बजा, टू अर्ली सो गए, फिर देखा 3:15, नहीं अभी टाइम है थोड़ा, फिर देखा 3:30, थोड़ी देर और, फिर देखा 4:30, फिर भागो भागो और योग में, पर दूसरों को पता ना चले कि हम लेट आए, इसलिए धीरे धीरे चलना योग युक्त, ताकि किसी को लगे यहीं कहीं बैठे होंगे इससे पहले भी, ये ना पता चले कि कमरे से आ रहे। ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है। तो दूसरा नियम, जब तक जो सामग्री है वो यूज ना हो जाए तब तक नई नई लानी है। तीसरा, मकान के निर्माण के बाद बचे हुए फालतू कचरे की सफाई मकान को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। मकान बन गया, अब बहुत सारी चीजें बची हुई है, उसको क्या करेंगे? उसको हटाना पड़ेगा वहां से। वैसे ही शरीर में यदि मल का शरीर के निर्माण में भोजन से आवश्यक रस लेने के पश्चात जो मल बच जाता है उसकी सफाई अति आवश्यक है। इसके लिए जो डाल रहे, डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज व्हाट इज लेस अबाउट व्हाट यू ईट, इट्स मोर अबाउट व्हाट यू एलिमिनेट। जो निकालते हैं, जो निष्कासन किया जा रहा है उसका हेल्थ से ज्यादा संबंध है। पर लोग क्या पूछते हैं ज्यादा, क्या खाऊं, कौन सा फल खाऊं, सुपर फूड, ये खाऊं कि वो खाऊं, क्या खाना चाहिए, ये बीमारी है क्या खाऊं, वो बीमारी है क्या खाऊं, खाने का पूछते, क्या खाने का, सब खाओ मेरा डैश डैश छोड़कर। तो तीसरा है सफाई, जो बच गया है सामग्री उसको एलिमिनेट। ये एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। उस दिन भी हमने देखा था, 9 दिन की सीरीज चली थी आहार पर और 7 दिन का था रॉ चैलेंज, आशा है सबने किया होगा। 7 डेज रॉ चैलेंज। एलिमिनेशन कैसे करेंगे? एलिमिनेशन की 2 मेथड्स, एक तो फास्टिंग, दूसरा एनिमा। स्टमक क्लीन, जब तक नहीं तब तक योग भी नहीं, भारीपन रहेगा, ये तीसरा। चौथा, कारीगर एक ही समय में एक ही काम ठीक से कर सकते हैं, या तो मकान का निर्माण का काम या सफाई का काम, दोनों काम एक ही समय में नहीं कर सकते। इधर दीवार है, इसको थोड़ फोड़ कर रहे हैं, कचरा तो गिरेगा, साथ साथ सफाई भी, एक साथ नहीं, पहले वो पूरा कर लो फिर जो भी सफाई है बाद में। शरीर में जीवनी शक्ति एक समय में एक ही काम कर सकती है, प्राप्त भोजन का पाचन या पाचन के बाद एकत्र मल की सफाई, दोनों ही काम एक समय पर नहीं होते। इसलिए एक बार अंदर डाल दिया, अब वेट करो, रुक जाओ 7-8 घंटे, ना खाना न पीना, पाचन का कार्य चालू हो चुका है। अब फिर से तुरंत तुरंत डाल दिया, पानी डाल दिया, टोली डाल दी, भेल डाल दी, सैंडविच डाल दिया, बिस्किट डाल दिया, चाय डाल दी, कॉफी डाल दी, और कोई कोई कोल्ड ड्रिंक्स, क्या मुरमुरे कुरकुरे डालना चालू ही रहता है। हम गाय की तरह हो गए, निरंतर कुछ ना कुछ चबाते ही रहते, चबाते ही रहते, चबाते ही रहते। योगी अर्थात मुंह बंद, जिसने रसों को जीता उसने विश्व को जीता, ऐसा भागवत में लिखा है। और जब पाचन हो रहा है, जब मन में यह संकल्प आए कि खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, तब एक ही निर्णय लो, नहीं। जब ये आए कि पेट साफ करना है अभी कि थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, तब पोस्टपोन नहीं करना है। ये 2 नियम है। कितने हो गए? 4। पांचवा, कारीगर को भवन निर्माण के कार्य में फुर्सत ना देने से यदि फालतू कचरा एकत्र होता चला जाएगा तो उसकी सफाई नहीं हो सकेगी।
जीवनी शक्ति को भोजन पचाने के काम में से फुर्सत दी जाए। दिए बिना यदि शरीर में मल एकत्र होता रहेगा तो सफाई कभी नहीं होगी। इसके लिए कारीगर को क्या होना है, थोड़ी सा छुट्टी देनी है, बीच में उसको टाइम देना है ताकि वो कंस्ट्रक्शन का काम रोक दे और सफाई का काम करे। अभी डालते ही नहीं जाना है कंटिन्यूस। अगला, जिस समय कचरे की सफाई की जाती है उस समय धूल आदि उड़कर आंख नाक आदि में भरकर परेशान करती है। वह धूल झाड़ू की नहीं होती है बल्कि कचरे के कारण होती है। वो कहते हैं जैसे हमने नेचुरल फूड लेना चालू किया, रॉ लेना चालू किया, जूसेस लेना चालू किया, क्या हो गया हमको, उल्टी होने लगी, चक्कर आने लगे, बीपी कम हो गया, वीकनेस लगती है, पेट में गैस, ये हो गया, वो हो गया, हजार प्रकार की चीजें हो गई, वेट लॉस हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। ये सब क्या है, साइकिक डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस चालू हो गया। एक दिन उपवास क्या कर लिया, उस एक दिन के उपवास में 15 साल पुरानी जो बीती बातें थी वो भी याद आ गई, वो सब याद आने लगा, क्योंकि जो सप्रेस था वो सब निकलता है उसमें फास्टिंग स्टेज में। इसलिए लोग क्या कहते, छोड़ो इसको, ये करना ही नहीं है, हटाओ इसको। तो जब भी डायटरी चेंज से शरीर गुजरेगा, डिटॉक्स सिम्टम्स होंगे। उस दिन चर्चा की थी इसकी डिटेल में, कौन कौन से हो सकते, चक्कर आएंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बीपी कम होगा, उल्टी आएगी, नौशिया आएगा, पेट में दर्द होगा, बहुत कुछ होगा, अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी होगी, थर थर कंपन होगा, बाल, ये वो। तो ये सब क्या है, डिटॉक्स सिम्टम्स है। जिस तरह जीवनी शक्ति शरीर में मल निकालती है उस समय शरीर में ढीलापन आता है, कमजोरी आती है, चक्कर आता है, सिर दर्द होता है। यह सब मन के उभार के कारण होता है, भोजन के अभाव से नहीं। एक दिन अनाज नहीं खाया तो एकदम कमजोरी आ गई, वो अनाज न खाने से नहीं आई, वो जो मल संचित था उसका यह डिटॉक्स सिम्टम है। और ये होना ही चाहिए, ये नहीं होता है तो उसके बाद साफ फर्श पर झाड़ू लगाने से धूल उड़ने का प्रश्न ही नहीं। जिसके शरीर में मल ही नहीं है, टॉक्सिन्स ही नहीं है, वो फास्ट में ऐसे जाते और ऐसे आराम से वापस आ जाते। फास्टिंग करते हैं पर कुछ भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है, सारे काम कर रहे हैं, सारा कार्य चल रहा है, ना वेट लॉस होता है ना कुछ होता है। होता भी है 2-3 किलो तो जैसे बाहर निकलेंगे और एक ग्लास जूस पी लेंगे तुरंत वेट गेन हो जाएगा। दैट इज द साइन ऑफ प्योर क्लीन बॉडी, जिसमें कोई डिटॉक्स सिम्टम्स नहीं होंगे। फास्टिंग स्टेज में ऐसे जाते आराम से और निकल के भी वापस आ जाते, पर जो टॉक्सिन से भरा हुआ शरीर है वो जैसे ही उपवास करने जाता है एकदम भयंकर रिएक्शन होती है। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, ये छोड़ने की वजह से हुआ, इसलिए इसको हटाओ, वापस वही चालू कर देते, सफाई का काम रोक दिया। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि तो धूल उड़ रही है सफाई करते समय, वो जो धूल है वो कहां की है। जिस समय कचरे की सफाई की जाती है उस समय धूल उड़कर आंख नाक आदि में भरकर परेशान करती है। वह धूल झाड़ू की नहीं होती है, किसकी है, वो कचरे की धूल है। और साफ फर्श पर झाड़ू लगाने से धूल उड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। विकारों से रहित शरीर में भोजन के अभाव से ढीलापन नहीं आएगा, कमजोरी नहीं आएगी, सिरदर्द नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो आइडियली तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं खाया ना पिया, कमजोरी आ गई, पर वो कमजोरी भोजन के अभाव की नहीं है, टॉक्सिन्स की है। इसलिए जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड फास्टर्स है, आदत हो गई है उनको फास्टिंग रहने की, वो आराम से फास्टिंग में जाते और निकल के आ जाते। कितने लोग कहते हैं अभी मेरा 3 दिन का निर्जला पूरा हुआ, 3 दिन ड्राई फास्ट। क्या कर रहे थे 3 में, घर पे बैठ के सो रहे थे ना, कहाँ सोने को टाइम है, सारी सेवाएं चालू है, भाषण देना चालू, एक ही दिन में 4 भाषण, सारी सेवा, सेंटर की सेवा, ये सेवा, वो सेवा, सब कुछ कर रहे, परंतु और ऊर्जा वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी, कोई कमजोरी, कोई चक्कर, कुछ भी नहीं। हाँ पहले होता था, अब नहीं होता, स्टार्टिंग में ये सब होगा। इंग्लिश में कहते हैं टीदिंग प्रॉब्लम्स, शुरुआत शुरुआत की प्रॉब्लम्स। 8वां, मकान में मलमा एकत्र ना हो। इसका सीधा सा उपाय है कि काम कारीगर रोज अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर उसको नित्य उतनी ही सामग्री उसे दी जाए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उसको नित्य थोड़े समय के अवकाश के लिए अवकाश देकर सफाई के लिए दिया जाए। उतना ही सामग्री डालनी है जितने की आवश्यकता है, जितनी उसकी कारीगर को, बहुत ज़्यादा काम नहीं दे देना है। तुमको ये भी खाना करना है, वो भी करना है, अभी ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो, पागल होके एक दिन भाग जाते हैं फिर कुमार। ये भी करो, वो भी करो, ये सब भी करो। वैसे हम क्या करते हैं, सुबह क्या दे दिया उसको, सुबह जूस दे दिया, फिर नाश्ते में क्या क्या दे दिया उसको, उसको पोहा दे दिया, फिर उसको चाय दे दी, फिर ब्रेड दे दी, फिर सैंडविच दे दिया, फिर पराठा भी दे दिया, फिर दोपहर में दाल रोटी चावल सब्जी अचार छाछ सलाद पापड़ ये सब दे दिया। ये हो गया, यहाँ तक भी ठीक था। फिर उसके बाद में शाम को वापस बाबा पहाड़ी टोली, फिर वो आ गए, फिर उनकी क्लास, फिर टोली मिल गई, फिर वो सब भी डाल दिया, फिर रात का भोजन भी डाल दिया। भोजन शरीर क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको, इतना सारा काम दे दिया, यहाँ से तो डाल दिया, यहाँ डालते समय तो हमारा काम पूरा हो गया, हमने डाल दिया, पर यहाँ काम चालू हुआ है, पूरे शरीर की ऊर्जा अब उसको पचाने में लग गई है, पूरी मस्तिष्क की ऊर्जा नीचे खींची जा रही है पेट की तरफ, इसलिए तो नींद आती है भोजन के बाद। सारा इधर, सारा ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो, एनर्जी, सब कुछ इधर, और फिर कमजोरी, और फिर डॉक्टर के पास, क्या तकलीफ है, कमजोरी बहुत है, अजीब सी कमजोरी रहती है शरीर, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, कहीं कुछ नहीं है, रिपोर्ट में कुछ है नहीं, पर कमजोरी, भयंकर कमजोरी, कुछ ताकत की अच्छी कोई दवा दे दो बस, कोई टॉनिक होगा। खाता हूं वैसे, खाने के लिए खाता हूं, भूख है नहीं, खाना होता है इसलिए खाता हूं, तेल घी थोड़ा ज्यादा खाते है ना, कभी नहीं, कभी और रोटी को हाँ वो तो लगाते उसको गिनते ही नहीं है तेल या घी, वो रूटीन है, मतलब ये जो कमजोरी है इसका कारण ये है, कारीगर को बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर रहे हो बेचारे, चुपचाप काम कर लेते हैं ना तो कितना भी थोप देते हैं उसके ऊपर। अगला, यदि कभी मकान में कारीगर को कचरा साफ करने का मौका न लगे तो एक दो दिन निर्माण का कार्य बंद कराकर कचरा साफ कर देना ठीक है। कभी कभी उनको थोड़ी लंबी छुट्टी दे दो, दो दिन की छुट्टी दे दो फुल, कितना खुश हो जाएंगे, अगली बार जब आएंगे ना तो ऊर्जा भरी रहेगी उनमें। कभी तीन दिन की छुट्टी दे दो, पर एकदम मत दो, इसका प्रैक्टिस चाहिए। पहले एक दिन की छुट्टी, पहले तो 12 घंटा, फिर 16 घंटा, फिर 18, फिर 20, और जो प्रैक्टिस करो उस पर जब तक ग्रिप ना आ जाए आगे नहीं बढ़ना है, अच्छी ग्रिप आ जाए। इसलिए कहा ये पूरी भट्टी 84 दिन की, इसमें 16 घंटे तक तो पहुंचना ही है हर एक को, 16 घंटा निर्जला, न खाना न पीना, अनहाइड्रस फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, हेब्रू फास्टिंग, 16 आवर्स मिनिमम ये टारगेट रखना, 8 घंटा खाने की विंडो, इस विंडो में जितना खाना है भले खा लो, पहले वो तो करो, कम से कम ये तो हो जाए, भले अभी ये मत रखो क्या खाना है, इसके ज़्यादा ध्यान नहीं रखो, जो खाना है पहले इस पे मास्टरी करो, टाइम पर 16 घंटे निर्जल होना चाहिए, भले इसमें आपको जो खाना है खा लो, एक साल तो नहीं लगाओ। बाबा ने कहा संकल्प विदेशियों को कहा, कहा रात में इमर्ज करो, सुबह इमर्ज करो संकल्प को, नहीं लगेगा एक साल, 16 साल तो 16 घंटा तो मिनिमम है, 16 घंटा में ही तो ऑटोफेजी होती है, ऑटोफेजी अर्थात शरीर के जो निर्माण टूट फूट का कार्य है वो 16 घंटे के अंदर बिना नहीं हो सकता, और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और आत्मसंयम के लिए अच्छा है, और रिजनरेशन के लिए अच्छा है, बॉडी के बीमारियों से मुक्ति के लिए अच्छा है, ये तो मिनिमम है, 8 घंटा तो बहुत बड़ा टाइम है, ये तो हम कहेंगे शुरुआत है 8 घंटा पर यहाँ तक पहुँचना है, मिनिमम 16 आवर्स डेली, न खाना न पीना, ड्राई निर्जल निर्जला, ये तपस्या का पीरियड समझो, इसमें इसको समझो, ये क्या कर रहा है, ये कारीगर जो है ना आराम कर रहे हैं या सफाई का काम कर रहे हैं। जब हम खाते नहीं हैं तो पाचन शक्ति किस में लग जाती है, सफाई में, और जब हम खाते ही रहते हैं तो एनर्जी यूज होती रहती है, जब हम बंद करते तो अपने आप सफाई चालू हो जाती है। और सफाई होने के बाद जो एनर्जी आती है वो ऐसी एनर्जी होती है कि इस किसी व्यक्ति ने आज तक कभी अनुभव ही नहीं की होगी। फर्स्ट टाइम जीवन में एक क्रांति आती है, इतनी ऊर्जा, सोने जाओ तो नींद थोड़ी सी हो गई पूरी, अलार्म बाद में बजता है 15 मिनट के बाद, हम उठते पहले, क्योंकि शरीर में कहीं पर भी कोई भी रुकाव, ब्लॉक, अवरोध नहीं है। जीवनी शक्ति बह रही है सारे चक्रों से, सारी नाड़ियों से, ऊर्जा ही ऊर्जा। अगला, मकान बनाने के लिए वस्तुओं का चयन करते समय एक अनुपात का ध्यान रखना चाहिए, परसेंटेज। उसी तरह शरीर के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के भोजन की मात्रा, ऐसा नहीं कि ये पसंद है तो बहुत ज्यादा खा लिया, मात्रा, कितनी मात्रा में हम खा रहे, जो चीज पसंद है वो बहुत ज्यादा खा ली और जो पसंद नहीं वो थोड़ी सी, इसको योगी नहीं कहते, योगी अर्थात समरस, एक रस, तो वो मात्रा। अगला, जितनी सामग्री मकान के निर्माण करते समय लगेगी, निर्माण समाप्त हो जाने के बाद उतनी नहीं लगती। हमारे शरीर का निर्माण 25 वर्ष तक पूरा हो जाता है, बच्चों को भरपूर खाए जितना खाना है, एक बार शरीर का निर्माण हो गया अब खाली मेंटेनेंस चाहिए उसको, और मेंटेनेंस में ज्यादा नहीं लगता है, उतना खर्चा थोड़ी ना आता है जितना खरीदने में, लैपटॉप खरीदा वो ज्यादा पैसे लगा, बाद में मेंटेनेंस में उतना खर्चा नहीं आएगा। उसी तरह शरीर एक बार बन चुका है, अभी खाली मेंटेन करना है उसको, उसमें इतना सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है जितना हम डाल रहे। शरीर बन चुकने अर्थात पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भोजन की उतनी आवश्यकता नहीं रहती जितनी कि निर्माण कार्य में जब शरीर बढ़ रहा होता है। परिश्रम के कारण कोशों की टूटफूट होती रहती, टूटफूट होने जाने के पश्चात उसकी पूर्ति के लिए परिश्रम के बाद भोजन की आवश्यकता है, और जो जिनका तो काम ही बहुत कम है, खाना पीना बैठना सोना, वो फिजिकल काम बहुत कम है, हार्ड वर्क बहुत कम है, उन्हें तो और भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए वो सब बातें हैं कि अच्छा खाओ, जो कुछ भी नहीं करते, बैठे बैठे सारे काम है, ऑफिस, उनके लिए तो। अगला, मकान एक बार बन गया, बनने के बाद उसकी सफाई की प्रतिदिन पहले से अधिक आवश्यकता है, क्लीनलीनेस की तरफ तो ज्यादा, सारा ध्यान क्लीनलीनेस की तरफ रहना चाहिए। टूट फूट वो जो है ना, बनने का काम हो चुका है, शरीर बन चुका है, अब खाली उसको मेंटेन करना है, उसकी सफाई इज मोर इंपॉर्टेंट। 13वां, मकान के कार्य की अधिकता के अनुसार मजदूरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जीवनी शक्ति की क्षमता किसी बाहर साधन से नहीं बढ़ाई जाती, इसका तो एक निश्चित अंश ही हमें अपने शरीर की योग्यता के अनुसार प्राप्त होता है। इसकी क्षमता को बढ़ाने का उपाय इसके अनावश्यक व्यय को रोकना है। शरीर की जो जीवनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो ची एनर्जी है, जो पावर है, वो जहां जहां बह रही है, गॉसिप्स में, झरमुई झगमुई में, इधर उधर की बातों में, काम विकार, ये सारी एनर्जी जहां जहां जा रही है उसको वहां वहां से रोकना है। तो ये थी आसक्ति, ये भी एक आसक्ति है, अटैचमेंट टू फूड। अनासक्त हो जाए चेतना, चाहे कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, हमें कोई आसक्ति नहीं, किसी भी चीज से आसक्ति नहीं। अगर कोई ये कहे कि तुम्हारा फेवरेट क्या है, फूड, तो क्या कहेंगे, मेरा कुछ फेवरेट है ही नहीं, सभी फेवरेट है और कुछ भी फेवरेट नहीं है, ऐसा कोई एक चीज फेवरेट है ही नहीं कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब कहना भी क्या है। ये यहाँ की वो चीज ना मुझे बहुत पसंद है, वहां की वो चीज मुझे बहुत पसंद है। कहीं पे भी शहर में जाते, हमने सुना है यहाँ का ये बहुत अच्छा है, फिर वो वहां का वो खाओ। छप्पन प्रकार के भोग रखे हो, योगी ऐसे गुजर जाए जैसे कुछ है ही नहीं। आके आप रोट की रबड़ी, यहाँ का वो, वहां का वो, तो योगी की आंखें कहीं पर भी नहीं डूबती, वो इसलिए खा रहा है ताकि वो अपने शरीर को जीवित रख सके, सेवा हो सके, तंदुरुस्त रख सके, स्वस्थ रख सके, शरीर बीमार ना पड़ जाए। क्योंकि शरीर जब बीमार पड़ता है तो पुरुषार्थ का क्या होता है हाल? अमृत वेला हो जाता है क्या? सब पहले तो बीमार पड़ गए, दवाइयाँ ये वो, कमजोरी, इच्छा नहीं होती, एक्सरसाइज, अगर शरीर में कहीं पर भी दर्द हो तो एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। उंगली में दर्द है, एक उंगली में, पर एक्सरसाइज करने को इच्छा ही नहीं होती है। शरीर में कहीं पर भी दर्द होगा तो एक्सरसाइज जीरो हो जाती है। शरीर में कहीं भी दर्द होगा तो मन उदास हो जाता है। बीमार हुए, एडमिट अगर हो गए तो डिपेंडेंसी आ जाती है। सब सब पूरा ज्ञान योग की जो दिनचर्या है वो तहस नहस हो जाती है, चरमरा जाता है पूरा पुल ज्ञान योग का। इसलिए योगियों को शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ये साधन है तपस्या का, इसे स्वस्थ रखना, सफाई पर ज्यादा ध्यान देना है ना कि निर्माण पर। निर्माण हो चुका है ऑलरेडी, अब उसे बहुत कम चीजों की आवश्यकता है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मोर, क्लीनलीनेस मोर, कंस्ट्रक्शन लेस। अगर कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग पे फिर डालते जाओगे तो बीमारी आएगी, मोटापा आएगा, ये दो चीजें आएगी। कई लोग बीमार नहीं है पर मोटे हैं, और जिनका वजन ज्यादा रहता है उनमें एक अजीब सी उदासी रहती है, एक शरीर में भारीपन रहता है, सुस्ती रहती है, भारीपन रहता है। अगर ना भी हो तो उदासी तो जरूर रहती है, एक अज्ञात सा डिप्रेशन रहता है, कुछ वो फुर्ती नहीं रहती है करने की। इसके लिए योगी अर्थात पतले दुबले ही ठीक है, चुस्त फुर्त उड़ने वाले। अच्छा, ओम शांति। We'll be right back.